بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور عنوان سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsiribir, जबकि हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib hindi। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज शनिवार है, आबान की 17, रबी उल अव्वल की 21 और नवंबर की 7 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। उसके बाद आप सुनेंगे एक संक्षिप्त कार्यक्रम अनमोल बातें। अनमोल बातें के बाद बारी होगी दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा की। राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण। और दोस्तों, हमारी आज की इस सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका की अगली सरकार को कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। ईरान में पिछले 24 घंटों में लगभग 9,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 430 लोगों की मौत हो गई। जो बाइडेन की चुनावी टीम ने कहा है कि उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाने का मार्ग समतल किया जा रहा है। भारत के राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। और अब आप हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने वालों को पता चल गया है कि वे गलत राह पर चल रहे हैं, इसलिए अमेरिका की अगली सरकार को कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शनिवार को कोरोना निरोधक समिति की बैठक में बोलते हुए व्हाइट हाउस के शासकों के आर्थिक आतंकवाद के सामने ईरानी जनता के प्रतिरोध की सराहना की और कहा कि उम्मीद है कि प्रतिबंध लगाने वाले ये समझ लेंगे कि इससे उनका मकसद पूरा नहीं होगा और इस अनुभव से पाठ लेते हुए वे नियमों और कानूनों का पालन करेंगे और अपने सभी वादों से प्रतिबद्धता प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र अपने संघर्ष और संयम से सामने वाले पक्ष को कानून का पालन करने पर मजबूर कर देगा। ईरान के राष्ट्रपति ने इसी तरह देश में कोरोना के फैलाव और उसकी वजह से पैदा होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया और कहा कि स्वास्थ्य मानकों और उपायों का अधिक पालन करने के लिए अधिक नियम और उपायों की जरूरत है। राष्ट्रपति रूहानी ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में धार्मिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि न्यूनतम उपायों अर्थात सामाजिक दूरी, मास्क और साफ सफाई द्वारा कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि तेहरान और काराकास के बीच रक्षा सहयोग पूरी तरह से कानूनी है। विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि ये वेनेजुएला का अधिकार है कि वो जहां से चाहे हथियार खरीदे। जरीफ ने वेनेजुएला के टीवी चैनल से बातचीत में अमरीकी विदेश मंत्रालय में ईरानी डेस्क के प्रभारी अब्राम्स के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान से मिसाइल वेनेजुएला नहीं पहुंचने देगा। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और वेनेजुएला के लिए सैन्य व रक्षा सहयोग कानूनी काम है और अमरीका ने सुरक्षा परिषद में इस तरह के सहयोग को रोकने की कोशिश की लेकिन उसे बुरी तरह से नाकामी मिली। विदेश मंत्री ने कहा कि अमरीका ने सुरक्षा परिषद में बुरी तरह हारने के बाद धमकी और गुंडागर्दी की अपनी पुरानी रणनीति अपनाई है। जरीफ ने कहा कि ईरान और वेनेजुएला ने अमरीका की गुंडागर्दी चलने नहीं दी और ईरान रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में वेनेजुएला के साथ सहयोग जारी रखेगा और इस सहयोग से अमरीका का कोई संबंध नहीं है। ईरान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि अधिकतम दबाव का अंत हो गया है और ट्रंप की कल्पना के विपरीत ईरान न केवल ये कि बिखरा नहीं है बल्कि उसने तेल के बिना अर्थव्यवस्था का अनुभव भी हासिल कर लिया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के सरकारी प्रवक्ता और राष्ट्रपति के मीडिया प्रभारी अली रबी ने एक लेख में लिखा है कि अभी तक अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया गया है लेकिन परिस्थितियों से यही लग रहा है कि घृणा फैलाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति का दौर खत्म होने वाला है। अली रबी ने लिखा है कि इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि अमरीका में जो भी राष्ट्रपति बने उससे हमारी नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और राष्ट्रपति रूहानी ने भी इसी सिलसिले में बल दिया है कि हमारे लिए ये अहम नहीं है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनता है बल्कि हमारे लिए वो तरीका अहम है जिस पर अमेरिका आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सबको मालूम था कि ट्रंप की जोर जबरदस्ती के सामने झुकने से न केवल ये कि वो पीछे नहीं हटेंगे बल्कि दीर्घकाल में ईरान के हित भी खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ट्रंप की गैर कानूनी मांगों का कोई अंत नहीं होगा और ईरान भी एक अपमानित और कमजोर समाज में बदल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान में पिछले 24 घंटों में लगभग 9,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए जबकि 430 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने शनिवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,450 नए मामले सामने आए जिनमें से 3,070 को अस्पतालों में भर्ती कराया गया जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,73,250 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 5,15,153 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में 430 लोगों की कोरोना के घातक वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बताया कि अब देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 37,832 हो गई है। इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,90,00,000 से ज्यादा हो चुकी है जिनमें से कम 12,50,000 की मौत हो गई है जबकि 3.5 करोड़ से अधिक लोग कोरोना को हरा चुके हैं। ये समाचार आपकी सेवा में रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। हालांकि अभी अमरीका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम परिणामों की घोषणा नहीं की गई है लेकिन जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाने का मार्ग समतल किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि अमेरिका में मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था और इस समय मतगणना का काम जारी है। हालांकि अब तक सामने आए परिणामों से डेमोक्रेट प्रत्याशी की जीत लगभग निश्चित दिखाई दे रही है लेकिन उन्हें अब तक आवश्यक इलेक्टोरल वोट हासिल नहीं हो पाए हैं। जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना, नेवाडा और अलास्का राज्यों के परिणाम आना बाकी हैं। इनमें से 3 राज्यों में बाइडेन को बढ़त हासिल है जबकि उत्तरी कैरोलिना और अलास्का में ट्रंप आगे चल रहे हैं। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन अब तक 7,48,00,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं और उन्हें 264 इलेक्टोरल वोट भी मिले हैं। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। इस तरह बाइडेन को सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत है। रिपब्लिकन प्रत्याशी और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं जबकि उन्हें जनता की ओर से 4,05,00,000 से ज्यादा वोट हासिल हो चुके हैं। इस बीच जो बाइडेन के घर के ऊपर से किसी भी तरह की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनकी सुरक्षा अधिक मजबूत कर दी गई है और उन्हें गुप्तचर सेवा का एक दस्ता भी उपलब्ध करा दिया गया है। टीकाकारों का कहना है कि ये इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि बाइडेन चुनाव जीत चुके हैं। भारत के राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है और एग्जिट पोल भी दिखाए जाने लगे हैं जिनमें राजग और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इस चरण में 1,204 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गई। मतदान की समाप्ति पर 55.22% के करीब वोटिंग होने के समाचार हैं और लोगों में मतदान के लिए काफी उत्साह देखा गया। बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी इसका पता 10 नवंबर को मतगणना के बाद चलेगा। सन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा 80 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी जिसे 71 सीटें मिली थीं। इसके अलावा भाजपा को 54, कांग्रेस को 27, एलजीपी को 2, आरएलएसपी को 2, हम को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें आई थीं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार गठबंधन के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी और क्षमा कीजिएगा और सरकार गठन के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। मतदान पूरा होने के बाद विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा एग्जिट पोल दिखाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ सर्वेक्षणों में एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 और अन्य को 7 सीटें मिलने की बात कही गई है। कुछ अन्य में राजग को 91 से 117 और महागठबंधन को 118 से 138 तक सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। एक अन्य एग्जिट पोल में एनडीए को 104 से 128 और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के त्यागपत्र देने की खबर झूठ और निराधार है। डेली मेल ने मॉस्को में अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि राष्ट्रपति पुतिन पार्किंसन में ग्रस्त हो गए हैं, इसलिए वे नए साल के जनवरी महीने में अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। पेस्कोव ने इस दावे का उल्लेख करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति पूरी तरह से स्वस्थ हैं और राष्ट्रपति पद छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें
श्रोताओं, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर मैं सैयद मीसम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली अलैहि सलाम से जो वसीयतें की हैं उनमें से एक ईश्वर या भय से रोना है। रोना एक ऐसी हालत है जो इंसान के अंदर उत्पन्न होने वाली खास हालत का परिणाम है। जोर डालकर रोना संभव नहीं है। अगर हम ये मान लें कि रोना आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है तो इस प्रकार के रोने का कोई लाभ नहीं है। अगर ये सोचकर रोना आए कि ईश्वर महान है और उसकी महानता के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, तो इस प्रकार का रोना महत्वपूर्ण है और उससे इंसान के अंदर निष्ठा पैदा होगी और ये इंसान के अंदर हार्दिक परिवर्तन का कारण है और उसका रास्ता यही है कि इंसान ये सोचे कि वो महान व सर्वसमर्थ ईश्वर के सामने है। अगर ये भावना और एहसास इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो नमाज और प्रार्थना में उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे और ये एहसास इंसान को परिवर्तित कर देगा कि वो महान ईश्वर के समक्ष है और नमाज में ध्यान का अर्थ यही है। हालांकि नमाज में ध्यान का ये अर्थ नहीं है कि इंसान अपने दिमाग में नमाज के शब्दों का अनुवाद करे, बल्कि वो ये आभास करे कि महान ईश्वर के सामने खड़ा है और उससे बात कर रहा है। ये वो एहसास है जो इंसान के अंदर नमाज में निष्ठा पैदा करता है। महान हस्तियों ने सिफारिश की है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नमाज में जहन कहीं ना जाए। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते स्वाभाविक रूप से इंसान का दिमाग नमाज से बाहर आ जाता है और ये चीज इंसान के बस में नहीं है। हालांकि जब हम ये समझ जाएं कि हमारा दिमाग नमाज से भटक कर कहीं और चला गया है तो उसे वापस नमाज में लाना चाहिए। बहरहाल अगर नमाज में इंसान को इस बात का आभास हो जाए कि वो महान ईश्वर के समक्ष खड़ा है और उससे बात कर रहा है तो नमाज में उसके अंदर रोने की हालत भी पैदा हो सकती है।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अभी तक आधिकारिक रूप से अगले राष्ट्रपति के नाम की घोषणा नहीं की गई है, परंतु अब तक जो नतीजे सामने आ चुके हैं उनके दृष्टिगत कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि जो बाइडन शीघ्र ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। श्रोताओ, अति ग्रहणकारी जानवी शासन ने वर्ष 2007 से कजा पट्टी का कड़ा परिवेष्टन कर रखा है। जानवी शासन के इस परिवेष्टन के कारण मजलूम फिलिस्तीनियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना है। जानवी शासन ने अपने ताजा अपराधों में फिलिस्तीनी अस्पतालों में भर्ती बीमारों को भी निशाना बनाया है।
تم الاعلان عن توقف محطه توليد الاكسجين الرئيسيه في قطاع غزه۔
पीपल्स अलायंस ने भारत नियंत्रित कश्मीर में अपना डेरा जमा रखा है और उसका कहना है कि कश्मीर में समाप्त किए गए विशेषाधिकार को जब तक वापस नहीं किया जाता तब तक हम अपना न केवल विरोध जारी रखेंगे बल्कि इसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।
इस देश का कोई भी राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए।
इसी बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत सरकार को कश्मीरियों का दिल जीतना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अभी तक आधिकारिक रूप से अगले राष्ट्रपति के नाम की घोषणा नहीं की गई है, परंतु अब तक जो नतीजे सामने आ चुके हैं उनके दृष्टिगत कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि जो बाइडन शीघ्र ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। कामरान नजफजादे की रिपोर्ट पेश करें साथ ही कायम रिजवी।
ट्रंप चाहते हैं कि उनके लिए भी वैसा ही हो जाए जो जूनियर बुश के लिए हुआ था, सन 2000 के प्रकरण की पुनरावृत्ति। उस साल के हंगामेदार चुनावों में अमेरिका की फेडरल अदालत ने बुश की मदद की थी जिसकी वजह से अल गोर चुनाव हार गए। वही अल गोर अब ये कह रहे हैं कि इस बात का उस बात से कोई संबंध नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप,
किंतु ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि संयोग से इसका संबंध है। उनमें से बहुत से अभी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा में हैं और अभी वे मैदान में नहीं आए हैं या यहाँ पर जो अपने राष्ट्रपति के लिए दुआएं कर रहे हैं। मिशिगन राज्य में चुनाव आयोजित कराने वाले अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उनके सिस्टम में कुछ खराबी हो गई थी जिसकी वजह से ट्रंप से संबंधित 6000 वोट बाइडन के खाते में चले गए हैं। मानो यही समस्या दूसरी जगहों पर भी संभव हुई है।
अगेंस्ट आवर कैंडिडेट।
इसी बीच व्हाइट हाउस में त्याग पत्र देने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा संस्था की प्रमुख ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ट्रंप के सलाहकार के सहायक ने भी ऐसा ही किया।
माय नेम इज जेरॉन स्मिथ।
सूचना मिली है कि शीघ्र ही ट्रंप अपने विशेष चिकित्सक और संक्रमित बीमारियों की संस्था के प्रमुख फाउची की खबर लेने वाले हैं, जिन्होंने गत दो सप्ताहों में ट्रंप की आलोचना की थी, जिससे ट्रंप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उधर प्रतिनिधि सभा की प्रमुख नैंसी पेलोसी ने कहा है कि शीघ्र ही बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं।
प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन, इट्स अ हैप्पी डे।
अब ट्रंप के बहुत से समर्थक भी मैदान में आ गए हैं। वे ट्रंप की कानूनी लड़ाई के लिए लाखों डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि उनके मतों की चोरी हो गई है। अमरीकी इतिहास में होने वाले हंगामेदार चुनाव में अभी बहुत से उतार चढ़ाव बाकी हैं। न्यूयॉर्क से कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
श्रोताओं, अति ग्रहणकारी जानवी शासन ने वर्ष 2007 से कजा पट्टी का कड़ा परिवेष्टन कर रखा है। जानवी शासन के इस परिवेष्टन के कारण मजलूम फिलिस्तीनियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना है। जानवी शासन ने अपने ताजा अपराधों में फिलिस्तीनी अस्पतालों में भर्ती बीमारों को भी निशाना बनाया है। इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट पेश करना साथी अख्तर अब्बास।
गजा पट्टी में ऑक्सीजन पैदा करने का जो मूल केंद्र है, उसके बंद होने की घोषणा के बाद इस क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना है और इस समय हजारों बीमारों की जान खतरे में है। इस समस्या का कारण आवश्यक चीजों और चिकित्सा उपकरणों की कमी और ये चिकित्सा त्रासदी, बल्कि जब से गजा का परिवेष्टन किया गया है तब से लेकर अब तक सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। एक फिलिस्तीनी चिकित्सक कहता है कि ऑक्सीजन केंद्र के बंद होने से हम आवाक रह गए। इससे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और इस चीज से अस्पतालों में इमरजेंसी विभाग जैसे निगरानी के विशेष कक्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में ये एक बोहरान है और ऑक्सीजन पैदा करने वाले केंद्र को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। इसराइली अपराधों ने इस बार अस्पताल में भर्ती बीमारों को लक्ष्य बनाया है। इस संकट का मुख्य कारण ये है कि इसराइल ऑक्सीजन पैदा करने वाले केंद्र की मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरणों को लाने से रोक रहा है। कोरोना का कहर जारी है और ऑक्सीजन की जरूरत है। इस बात के दृष्टिगत बहुत से फिलिस्तीनियों की जान खतरे में है और वे जिंदगी और मौत के दरमियान कश्मकश की जिंदगी गुजार रहे हैं। गजा में चिकित्सा उपकरणों को रोकने पर आधारित इसराइल की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई इस समस्या का कारण बनी हुई है। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की वजह से बहुत से बीमार दूसरे अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं और इस संबंध में शहीद अलक्सा अस्पताल की समस्याओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। उन हजारों फिलिस्तीनी बीमारों की जान बचाना बहुत जरूरी है जिन्हें ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है, और वो भी कोरोना के इन हालात में, और फिलिस्तीनियों की ये गुहार समस्त विश्ववासियों से है। इब्राहिम अहमद, IRIB न्यूज, गजा, फिलिस्तीन।
پیپلز الائنس نے بھارت نیتھت کشمیر میں اپنا ڈیرا جمع رکھا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کشمیر میں سماپت کیے گئے وشیش ادھیکار کو جب تک واپس نہیں کیا جاتا تب تک ہم اپنا نہ کیول ویروھ جاری رکھیں گے بلکہ اس کے لیے کسی بھی سیما تک جا سکتے ہیں۔ اسی بیچ راجیہ کے پورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کو کشمیریوں کا دل جیتنا چاہیے۔
کشمیر کو وشیش اختیارات واپس دلانے کی مانگ کو لے کر پیپلز الائنس نے جموں میں اپنا ڈیرا جمایا ہے۔ جموں میں آج پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس اور انیہ گٹھوں کے نیتاؤں نے لوگوں سے وارتا کی اور یہ کہا کہ جب تک ہمیں وشیش اختیارات واپس نہیں دیے جاتے ہیں تب تک ہم اپنا ابھیان جاری رکھیں گے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ جموں میں پینتھرز پارٹی اور انیہ دل بھی ان کے اس سماروہ میں شامل ہوئے۔ الیکھنی ہے کہ دارا 370 اور 35A کے انت کے بعد اگرچہ نئی دہلی کا یہ ماننا ہے کہ یہ کشمیر کے ہت میں ہے، پرنتو جموں کشمیر کے جو بھی راجنیتک دل ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہیں واپس نہیں کیا جاتا ہے تو وہ اس کا ورودھ ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کو واپس لانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ نئی دہلی کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے دل جیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ کشمیریوں کے ہت میں نہیں ہے۔ اس بیچ ممبئی میں شیو سینا نے نئی دہلی کی سرکار کا سمرتھن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھارا 370 اور 35A کے حوالے سے جو موجودہ سرکار نے نرنے لیا ہے ہم ان کا سہیوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے لیے جو بھی بھارت واسی ہے وہ کشمیر میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں۔ اس اوسر پر شیو سینا کے پروکتا اور منتری نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
پوری طرح سے ہندوستان کا الحاظ جنگ ہو گیا ہے، اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اس دیش کا کوئی بھی راشٹر بھکت یہ نہیں کہے گا کہ دھارا 370 واپس کشمیر میں لانا چاہیے یا 35A لانا چاہیے۔ اب تو کیندر سرکار نے کشمیر میں جو ویاپاری ہے، جو ادیوگ جگ ہے، ان کو بھی زمین خریدنے کے لیے پرمیشن دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب کشمیر میں دیش سے کسی بھی کونے سے کوئی بھی ویکتی جا کر وہاں زمین خرید کر سکتی ہے اور اپنا ویاپار ادیوگ کر سکتی ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں کے لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگے، وہاں کے لوگ ہندوستان کے مکھیہ دھارا میں آئے گی۔ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا پاکستان سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے جس میں دو الگاؤں وادی چھاپہ ماروں کے ہتاہت ہونے کی سوچنا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دکشنی کشمیر کے پلوامہ میں بھارتی سرکشا بلوں کے ساتھ ایک مڈبیڑ میں دو الگاؤں وادی چھاپہ مار ہتاہت ہوئے ہیں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروع ہماری سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریہ ہوگا نیا سویرا، پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریہ ایران بھرمڑ۔
ایران بھرمڑ۔
دوستو، کاریکرم ایران بھرمڑ کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم نیشا پور نگر کے بارے میں چرچا کریں گے۔
دوستوں، نیشاپور ایران کا ایسا نگر ہے جسے فیروزے کی کانوں کے کارن وشو خیاتی پراپت ہے۔ نیشاپور خراسان رضوی پرانت کا ایک شہر ہے۔ اس نگر کی ارتھ ویوستھا کرشی، پشو پالن اور ہست کلا ادیوگ پر نربھر ہے۔ نیشاپور میں گیہوں، جو، جوار، روئی، سبزیاں اور پھلوں کی پیداوار بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ خراسان رضوی پرانت میں پریوگ ہونے والے اناج اور سبزیاں ایوم پھل یہیں پر پیدا ہوتے ہیں۔ نیشاپور میں آدھونک اور پارمپرک دونوں ہی پرکار کی سینچائی شیلیاں پرچلت ہیں۔ یہاں کی بھومی بہت ہی اپجاؤ ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے باغ ہیں اور ہر اور ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ نیشاپور بہت ہی اچھی جلوایو والا نگر ہے۔
निशापुर में भूमिगत जलस्रोत वहाँ के महत्वपूर्ण पानी के भंडार माने जाते हैं, जो आज भी अपने पारंपरिक रूप में मौजूद हैं। इस नगर का उत्तरी भाग बहुत ही हरा भरा है और इसी क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक है। निशापुर नगर की महत्वपूर्ण नदी कालशूर है, जो निकटवर्ती पर्वत से निकली है। ये नदी पहाड़ से निकलकर सब्जवार से होते हुए मरुस्थल की ओर चली जाती है। इस क्षेत्र की दूसरी नदियों के नाम इस प्रकार हैं: दुरूत, खोर, बुजान, बागरूद, मीराबाद, ताकान, बार, बकी और सिरे विलायत। सब्जवार नगर की सबसे ऊंची चोटी 3211 मीटर की है।
निशापुर का मैदानी भाग उत्तर और पूरब से बीनालूत की पहाड़ियों से घिरा है। ये नगर दक्षिण से सुर्ख काश्मर पर्वत तथा चहल तुर्बत हैदरियान की ऊंचाइयों एवं पश्चिम से सब्जवार के मरुस्थल से मिला हुआ है। निशापुर की जमीन उपजाऊ है। निशापुर के लोग अच्छी जलवायु, हरे भरे बागों और विविध प्रकार के फलों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। अधिकांश उपजाऊ और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र निशापुर नगर के उत्तर में स्थित हैं। खुरासान प्रांत के 6 शहर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कालशूर नदी है। इसका उद्गम स्थल इस नगर के ऊंचे पहाड़ हैं। निशापुर की सबसे ऊंची चोटी अर्थात बीनालूत की ऊंचाई काफ़ी है, जो खुरासान की छत के नाम से प्रसिद्ध है। ये चोटी बुजान गांव के समीप स्थित है।
निशापुर नगर बीनालूत पहाड़ के आंचल में बसा हुआ है। ये नगर राजधानी तेहरान से 770 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निशापुर की मशहद से दूरी 127 किलोमीटर है। इस नगर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ से रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ही गुजरते हैं। निशापुर को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से पूर्वोत्तरी ईरान के प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता है। ये नगर 73 खुरासान और ईरान का ऐसा नगर है जो सिल्क रोड पर स्थित है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व में निशापुर का व्यापारिक संबंध प्राचीन सिंध और मेसोपोटामिया से था। इस हिसाब से ये खुरासान का अति प्राचीन नगर है। कहते हैं कि तीसरी शताब्दी हिजरी कमरी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी हिजरी कमरी तक के 300 साल निशापुर के इतिहास में बहुत ही उतार चढ़ाव वाले साल कहे जाते हैं। तीसरी शताब्दी ईस्वी में सासानियों के काल में शापुर प्रथम के आदेश पर निशापुर की स्थापना की गई थी। सन 643 ईस्वी में दूसरे खलीफा के शासनकाल में निशापुर पर नियंत्रण कर लिया गया था।
निशापुर एक समय में ईरान की राजधानी भी रह चुका है। ताहिरियों और सलजुकियों के शासनकाल में दो बार निशापुर ईरान की राजधानी बन चुका है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में निशापुर संसार के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। खुरासान में इस्लाम के उदय से लेकर ईरान पर मंगोलों के हमलों तक निशापुर बहुत ही विकसित एवं प्रख्यात रहा। उस दौरान निशापुर को ईरान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखा जाता था। उस काल में इसको पूरब के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। सिल्क रोड के किनारे स्थित होने के कारण विगत में यहाँ से बड़े बड़े व्यापारिक कारवां गुजरा करते थे।
इस्लामी सभ्यता के स्वर्णिम काल विशेषकर अब्बासी काल में निशापुर ज्ञान विज्ञान का केंद्र रह चुका है। उस काल में निशापुर के बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, लेखक, धर्मगुरु और सूफी रहा करते थे। निशापुर पर मंगोलों के पाश्विक हमलों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे इसको जहाँ पर बहुत नुकसान झेलना पड़ा वहीं पर इसका विकास भी रुक गया। इस हमले से पहले तक ये नगर ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में अपनी ख्याति के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत आगे था। ये नगर आज भी अपनी वैभवता के साथ मौजूद है। यही कारण है कि यूनेस्को ने सन 2011 में निशापुर नगर को ईरान के महत्वपूर्ण नगरों की सूची में शामिल किया।
वैसे निशापुर को केवल मंगलों के हमले से ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि कई बार उसे भूकंपों ने भी तबाह किया है। भूकंप में नष्ट होने के बाद निशापुर के रहने वालों ने नगर के पश्चिमोत्तरी भाग में एक नए नगर की स्थापना की। वर्तमान समय में प्राचीन निशापुर के नाम पर अब को नदीश नामक एक क्षेत्र ही बाकी रहा है, जिसका क्षेत्रफल 3,500 हेक्टेयर है। सन 1935 में निशापुर में प्राचीन चीज़ों की खोज का काम पहली बार शुरू किया गया था, जो बाद के वर्षों में भी जारी रहा। बताया जाता है कि वर्तमान निशापुर शहर के निकट आज भी बहुत से खंडर दिखाई देते हैं, जो इस नगर की प्राचीनता की गवाही देते हैं।
ये जानना रोचक होगा कि तीसरी और चौथी शताब्दी हिजरी में निशापुर में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम अपने चरम पर था। उस काल में निशापुर को कच्ची मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। सन 1988 में पुरातन विभाग की गहन खोजबीन के बाद इस नगर में कच्ची मिट्टी के बर्तनों के इतिहास को निर्धारित किया गया था। खुदाई में निशापुर से निकलने वाली मिट्टी से बनी कलाकृतियों और बर्तनों को तेहरान तथा न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट संग्रहालय में रखा गया।
शोधकर्ताओं का ये कहना है कि निशापुर में खुदाई के दौरान मिलने वाली मिट्टी की कलाकृतियों पर बनी हुई कला सासानी काल में धातु पर बनाई जाने वाली कला से मिलती जुलती है, जो इसे मिट्टी के बर्तनों पर बनाने के काम को संभव करती है। यहाँ के प्राचीन मिट्टी के बर्तनों पर बनी कला की विविधता एवं विभिन्न प्रकार के डिजाइन निशापुर के प्राचीन काल के कलाकारों की दक्षता एवं निपुणता के प्रतीक हैं।
निशापुर अपने फिरोज़ों के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर इतना अच्छा फिरोज़ा निकलता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल है। सदियों से निशापुर की खदानों से फिरोज़ा निकाला जा रहा है, जिसका विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। न्यू मैक्सिको, नेवाडा, कोलोराडो, तिब्बत, सीना प्रायद्वीप और चिली में फिरोजे की खदानों के बावजूद निशापुर का फिरोजा अधिक मूल्यवान एवं उत्तम माना जाता है। खदान विशेषज्ञों के अनुसार निशापुर का फिरोजा विश्व में सबसे अच्छा होता है। फिरोजा एक मूल्यवान पत्थर होता है जिसका रंग फिरोजी होता है। कहा जाता है कि हजरत ईसा मसीह के जन्म से 3,400 वर्ष पूर्व मिस्र के फिरौन सीना मरुस्थल में फिरोजा निकालते और उसका प्रयोग आभूषणों के रूप में किया करते थे।
फिरोजा निकालने एवं उसे तराशने का कार्य ईरान में सासानी काल में प्रचलित था। उसका प्रयोग शासकों के बर्तनों एवं अंगूठियों को सुसज्जित करने के लिए होता था। फिरोजा की खदान मादन निशापुर गांव के निकट स्थित है। इसकी ऊंचाई जमीन की सतह से 2012 मीटर है। इस खदान में जो खुदाई के दौरान उसमें पाई जाने वाली गुफाएं इस वास्तविकता की सूचक है कि इस खदान से फिरोजा निकाले जाने का इतिहास शताब्दियों पुराना है। पुरातत्ववेत्ताओं को खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे इस बात की पुष्टि करती हैं कि 2000 ईसा पूर्व फिरोजे का प्रयोग साज सज्जा के कार्यों में होता था। आज ईरान का फिरोजा विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। तुर्की, इटली और स्वीडन जैसे देश ईरानी फिरोजे के मुख्य खरीदार हैं।
मित्रों, जैसा कि हम आरंभ में बता चुके हैं कि निशापुर में बहुत सी विश्व विख्यात हस्तियां पैदा हुई हैं। हकीम उमर खय्याम के नाम से प्रसिद्ध गयासुद्दीन अबुल फतह बिन इब्राहिम खय्यामी का भी जन्म निशापुर में ही हुआ था। वे दर्शन शास्त्री, गणितज्ञ, ज्योतिषी और प्रसिद्ध ईरानी साहित्यकार हैं। सन 427 हिजरी शमसी में निशापुर में उनका जन्म हुआ था। सन 510 हिजरी शमसी عمر خیام کا سورگواس ہو گیا۔ عمر خیام اپنے سمے کے بہت سے گیانیوں میں سروشریشٹھ تھے۔ انہوں نے گڑت اور جیومتی آدی وشیوں کے بارے میں کئی پستکیں لکھی ہیں۔ ان کے دوارا لکھی گئی ان پستکوں کے بعد کی شتابدیوں میں یورپ واسیوں نے ان سے بہت ادھک لابھ اٹھایا۔
سن 467 ہجری قمری میں جب وہ ماتر 27 ورش کے تھے تو انہیں ودوانوں اور گنتجوں کی سہایتا سے تتکالین کیلنڈر صحیح کرنے کا کاریہ سونپا گیا تھا۔ اس کاریہ کو کئی لوگوں نے مل کر کیا۔ اسے پورا کرنے میں اسفان کی ویدشالا میں 4 ورشوں کا سمے لگا تھا۔ سمے کی سوکشم جانکاری کے لیے جلالی کیلنڈر کو آج تک وشو میں بہت مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ عمر خیام نے 470 ہجری قمری ارتھات 1077 عیسوی میں جیومتی کے سمبندھ میں کتاب لکھی ہے جس میں جیومتی سدھانتوں کی سمیکشا کی گئی ہے۔ عمر خیام نے دوسرے کئی وشیوں پر بھی وبھن کتابیں لکھی ہیں، پرنتو گنت کے کھیتر میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہیں وشیش مہتو پراپت ہے۔ عمر خیام کی قبر نیشاپور کے ایک باغ میں ہے۔ اس مہان ایرانی ودوان کی قبر پر دکش ایرانی واستوکار ہوشانگ سہون نے ایک سندر مقبرے کا نرمان کیا ہے۔ اس سندر عمارت کے نرمان میں ایران کی پراچین اور ورتمان نرمان شیلی کا پریوگ کیا گیا ہے۔ دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ نیا سویرا۔
متروں، کارکرم نیا سویرا کی انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں سواتی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کارکرم میں بریٹین کی مہیلا کیتھرین شیکڈم کے بارے میں چرچا کریں گے۔
اسلام ایسا دھرم ہے جو سنسار کے سبھی راشٹروں کو پربھاوت کرتا آیا ہے۔ اس سے پربھاوت ہونے والے دنیا کے ہر کھیتر میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس ایشوریہ دھرم کے سمرتھکوں میں مہیلائیں بھی ہیں اور پروش بھی۔ اسلام اس سمے ان کھیتروں اور دیشوں میں ادھک پھیلا ہے جہاں پر اس کا ادھک ورودھ کیا جاتا ہے۔ ایشوریہ دھرم اسلام پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کے پرسار کے کئی کارک ہیں۔ جن کارکوں کی اسلام کے پھیلاؤ میں بھومیکا رہی ہے ان میں سے ایک کارک امام حسین علیہ السلام کا ویکتتو ایوم ان کا آندولن ہے۔ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اتیاچار اور بھرشٹاچار کے ورودھ آندولن چلایا تھا۔ کربلا میں سن 61 ہجری قمری میں گھٹنے والی گھٹنا اتنی مہتوپورن تھی کہ جو بھی اس سے اوگت ہوتا ہے وہ اس سے بہت پربھاوت ہوتا ہے۔
کربلا کی مہان گھٹنا نے برٹن کی رہنے والی کیتھرین شیکڈم کو بھی پربھاوت کیا۔ امام حسین کے آندولن سے وہ اتنی ادھک پربھاوت ہوئی کہ انہوں نے اسلام کو اپنا لیا۔ حالانکہ کیتھرین شیکڈم کا جن برٹن میں ایک عیسائی پریوار میں ہوا تھا، کنتو کربلا کے آندولن نے ان کو پوری طرح سے پریورتت کر دیا۔ कैथरीन शेकडम ने अकारण इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इस्लाम का अध्ययन करने और करबला की घटना से अवगत होने के बाद यह फैसला किया कि इस्लाम को अपनाया जाए। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम के व्यक्तित्व के साथ ही उनके पवित्र परिजनों के जीवन का भी बहुत ही गहराई से अध्ययन किया।
पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के बारे में कैथरीन शेकडम कहती हैं कि वास्तव में वे बहुत ही महान लोग थे। उन्होंने अपने बलिदानों से हमारे लिए हकीकत का मार्ग प्रशस्त किया। उनके सारे काम ईश्वर की प्रशंसा के लिए थे। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। कैथरीन शेकडम कहती हैं कि पैगंबर इस्लाम ने हमारे लिए रास्ता निर्धारित कर दिया है। वे कहती हैं कि इस्लाम के बारे में अध्ययन करने के दौरान मुझको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि पैगंबर इस्लाम के सही उत्तराधिकारी हजरत अली ही थे। वे इस बात में कोई संदेह नहीं देखती।
अन्य ताज़ा मुसलमानों की तरह कैथरीन भी यह मानती है कि इस्लाम जैसे आसमानी धर्म के प्रचार व प्रसार में लगे रहना चाहिए। कैथरीन शेकडम ने ब्रिटेन और फ्रांस के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है। वे एक फ्री लॉन्सर जर्नलिस्ट हैं। कैथरीन बहुत से चैनलों और समाचार पत्रों के लिए लेख लिखती हैं। उनका मानना है कि इस्लाम के नाम पर जिस प्रकार से वहाबियत को पेश किया जाता है वह सही नहीं है। वे कहती हैं कि पश्चिमी संचार माध्यम अपने गलत लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी संचार माध्यमों ने हम लोगों के लिए इस्लाम को इस रूप में पेश किया है कि मानो यह धर्म एक दूसरों को मारने काटने की अनुमति देता है, जबकि इस्लाम इससे बिल्कुल ही भिन्न है। दाइश जैसे आतंकवादी संगठन का इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। वे कहती हैं कि अगर आप दाइश की डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस्लाम और दाइश की विचारधारा में कितना अंतर है। कैथरीन का मानना है कि दाइश को नुकसान पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि इसको मुसलमानों और इस्लाम से बिल्कुल अलग किया जाए।
करबला की घटना के बारे में कैथरीन शेकडम कहती हैं कि मेरा मानना है कि यह घटना केवल मुसलमानों से विशेष नहीं है। मैं समझती हूं कि केवल मुसलमानों को इस घटना को मानना चाहिए, बल्कि संसार के सभी धर्मों के मानने वालों को एक दिन एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध संकल्प लेना चाहिए। जैसा कि पैगंबर इस्लाम का कहना है कि आशूरा का संबंध केवल मुसलमानों से नहीं है, बल्कि सारे के सारे इब्राहिमी धर्म किसी न किसी रूप में आशूरा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा दिन आए जब सभी धर्मों के मानने वाले एकजुट होकर आशूरा मनाएं। शेकडम के अनुसार ये बात सही है कि इतिहास में बहुत से क्रांतिकारी लोग आपको मिल जाएंगे, किंतु कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने इमाम हुसैन की तरह राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया।
उनका यह विचार है कि विश्व को वास्तविक इस्लाम को समझने की जरूरत है। मैं इस काम को करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन और उनके आंदोलन को सामने रखकर यह काम बहुत आसान हो जाता है। उनका आंदोलन शताब्दियों से राष्ट्रों को प्रभावित करता आ रहा है। शेकडम कहती हैं कि हालांकि यह काम आसान नहीं है, बल्कि इसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं। हालिया कुछ वर्षों के दौरान संचार माध्यमों में इमाम हुसैन के बारे में किए जाने वाले शोध और लेखों से बड़ी संख्या में लोग इमाम हुसैन और उनके आंदोलन से अवगत हुए हैं। वे कहती हैं कि इमाम हुसैन ने बुराइयों का डटकर मुकाबला किया। इमाम ने हमको यह पाठ पढ़ा दिया कि बुरे लोगों और बुराइयों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता।
इमाम हुसैन हमें ये पाठ दे गए हैं कि हमको सदैव बुराइयों का विरोध करते रहना चाहिए। انہوں نے ہمیں یہ بھی پاٹ دیا کہ ایشوریہ نیموں پر کٹیبدھ رہتے ہوئے ہی برائیوں پر وجے پراپت کی جا سکتی ہے، حالانکہ اس مارگ میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ کیتھرین شیکڈم کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب واسطو میں ایک آدرش مہیلا ہیں۔ حضرت زینب کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مہان مہیلا تھیں جو مہیلاؤں کے لیے سمپورن آدرش ہیں۔ حضرت زینب اپنی ماتا حضرت فاطمہ زہرا کی ہی بھانتی مہان تھیں۔ انہوں نے اپنے جیون میں جس ویرتا کا ادھارن پیش کیا ہے وہ سراہنیہ ہے۔ حضرت زینب نے سنسار کی مہیلاؤں کو بہت سے پاٹھ دیے ہیں، ایسے سمے میں کہ جب پروش بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، حضرت زینب نے یزید کے دربار میں اپستھت ہو کر اس کے کرموں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔
वर्तमान समय में आशुरा आंदोलन को आगे बढ़ाने के बारे में कैथरीन का कहना है कि जिस प्रकार के इमाम हुसैन ने करबला में अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया था, हमें भी एकजुट होकर आज वही काम करना चाहिए। अंधकार हर समय पाया जाता है जिसे मिटाने की जरूरत है। बुराइयों का दमन करने के लिए हमें उठ खड़े होना चाहिए। कैथरीन शेकडम के अनुसार इस समय पूरे संसार में बुराइयों का बोलबाला पाया जाता है जिनको मिटाने के लिए हुसैनी संकल्प की आवश्यकता है। कैथरीन शेकडम ने करबला की घटना के बारे में एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है मक्के से करबला। कैथरीन शेकडम आज भी इमाम हुसैन के आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाने की प्रति कटिबद्ध है। तो आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। खुदा हाफिज।
दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम नया सवेरा सुना। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और विस्तृत समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट देखिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। अनुमति दीजिए।
मित्रों, कार्यक्रम नया सवेरा की अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में ब्रिटेन की महिला कैथरीन शेकडम के बारे में चर्चा करेंगे।
इस्लाम ऐसा धर्म है जो संसार के सभी राष्ट्रों को प्रभावित करता आया है। इससे प्रभावित होने वाले दुनिया के हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। इस ईश्वरीय धर्म के समर्थकों में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। इस्लाम इस समय उन क्षेत्रों और देशों में अधिक फैला है जहां पर इसका अधिक विरोध किया जाता है। ईश्वरीय धर्म इस्लाम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रसार के कई कारक हैं। जिन कारकों की इस्लाम के फैलाव में भूमिका रही है उनमें से एक कारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का व्यक्तित्व एवं उनका आंदोलन है। पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। करबला में सन 61 हिजरी कमरी में घटने वाली घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो भी उससे अवगत होता है वो उससे बहुत प्रभावित होता है।
करबला की महान घटना ने ब्रिटेन की रहने वाली कैथरीन शेकडम को भी प्रभावित किया। इमाम हुसैन के आंदोलन से वे इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। हालांकि कैथरीन शेकडम का जन्म ब्रिटेन में एक ईसाई परिवार में हुआ था, किंतु करबला के आंदोलन ने उनको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। कैथरीन शेकडम ने अकारण इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इस्लाम का अध्ययन करने और करबला की घटना से अवगत होने के बाद यह फैसला किया कि इस्लाम को अपनाया जाए। उन्होंने पैगंबर इस्लाम के व्यक्तित्व के साथ ही उनके पवित्र परिजनों के जीवन का भी बहुत ही गहराई से अध्ययन किया।